आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीक्षा। आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज की खास पेशकश आविष्कार। कई लोगों के लिए नान खटाई की केवल सुगंध ही उनके बचपन की सुनहरी यादों को ताजा कर देती है। खास तौर पर मेरठ वासियों पर तो ये बात विशेष तौर पर लागू होती है, क्योंकि मेरठ शहर को अपनी लजीज नान खटाई के लिए दूर दूर से जाना जाता है। हालांकि नान खटाई देश या विश्व में सबसे लोकप्रिय व्यंजनों में से एक है, लेकिन फिर भी ये एकमात्र बिस्किट नहीं है जिसने भारत में अपार लोकप्रियता हासिल की थी, बल्कि भारत में तो बिस्किट का, या फिर यूं कहें बिस्कुट का समृद्ध इतिहास है। चलिए जानते हैं आज बिस्किट की मजेदार कहानी। शुरुआती खाद्य पदार्थ जिन्हें हम बिस्कुट कह सकते हैं, ये नवपाषाण युग में पत्थरों पर पकाए गए थे। हालांकि पके हुए अनाज के ये पुरातात्विक अवशेष पूरी तरह केक या फिर समतल कुरकुरे बिस्किट नहीं हुआ करते थे, बल्कि बिस्किट शब्द फ्रांसीसी बिस्क्यूट से अंग्रेजी में आया है, जिसका लैटिन मूल पेनिस बिस्किट, दो बार पकी हुई रोटी को संदर्भित करता है, यानी कि पेनिस बिस्किट से ये नाम निकल के आया है। रोमनों के पास बिस्किट का जो रूप था उससे हम रस कहते हैं। ये एक रोटी की ही तरह था जिसे कुरकुरा बनाने के लिए दो बार बेक किया जाता था, जिस कारण ये आम रोटी से ज्यादा तेज पकता था और यात्रियों और साथ ही सैनिकों के लिए राशन की उपयोगिता बढ़ाता था। 14वीं शताब्दी तक बिस्किट या फिर बिस्कुट शब्द अंग्रेजी में आम तौर पर दिखाई देने लगा, साथ ही इसकी परिभाषा भी व्यापक होती गई। दो बार पके हुए स्वादिष्ट नमकीन या फिर मीठे दोनों बिस्किट लोकप्रिय हैं। वेफर्स सबसे लंबे समय तक चलने वाले मध्ययुगीन बिस्किट्स में से एक थे, जिन्हें आग पर पकाया और ढाला या फिर रोल किया जाता था। उन्हें अक्सर हम खाने के बाद खाते थे। स्ट्रॉन्ग बिस्किट्स भी समय के साथ नरम होते गए। इस समस्या को हल करने के लिए शुरुआती बेकर्स ने कठोर बिस्किट बनाने का भरपूर प्रयास किया, क्योंकि ये बहुत ठोस और सूखे होते थे और उन्हें ठीक से संग्रहित या फिर परिवहन नहीं किया जाता था तो इन्हें कई सालों तक खराब हुए बिना रखा जा सकता था। लंबी यात्राओं में इन्हें अक्सर चाय, कॉफीज या फिर किसी और चीज में डुबोकर खाया जाता था। डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों की शुरुआत होने तक बिस्किट नेवी सेलर्स या फिर रॉयल नेवी सेलर्स के आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। आधुनिक बिस्किट का सबसे पुराना जीवित उदाहरण 1784 का मिलता है, जिसे एक जहाज का बिस्किट कहा जाता है। ये अपनी लंबी अवधि तक टिकने के गुणों के लिए प्रसिद्ध था और इतने अविनाशी थे कि कुछ नाविकों ने इन्हें पोस्ट कार्ड के रूप में भी इस्तेमाल किया था। 17वीं सदी में बिस्किट बदलने लगे। उस समय से पहले चीनी बहुत महंगी हुआ करती थी, इसीलिए इन्हें केवल अमीरों द्वारा ही खाया जाता था। फिर मिडिल ईस्ट से इन्हें आयात किया जाने लगा, लेकिन ब्रिटेन में चीनी की कीमत गिरने से चीनी का उपयोग करने वाले में सभी खाद्य पदार्थ सस्ते हो गए और फिर बिस्किट घर घर तक पहुंच गया। फिर आई 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी तक बिस्किट मुख्य रूप से मिठाई के रूप में ही खाए जाने लगे, लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश सामाजिक परिदृश्य में चाय की जड़ें बढ़ती गईं, वैसे वैसे बिस्किट भी समाज का एक अभिन्न अंग बन गया, जैसे दोपहर की चाय के समय खाने जाने लगा। 19वीं सदी तक बिस्किट हर जगह था, क्योंकि उन्हें घर पर बनाने में आसानी होती थी और वो हर अवसर के लिए उपलब्ध थे। इस दौर के शुरुआती बिस्किट सख्त, सूखे और बिना मिठास के हुआ करते थे। वो अक्सर सामूहिक बेकर्स ओवन में पकाए जाते थे, इसीलिए वो गरीबों के लिए आजीविका का एक सस्ता रूप बन गए थे। 19वीं शताब्दी के मिडल तक मीठे बिस्किट एक किफायती भोग थे और व्यवसाय काफी फल फूल रहा था। ब्रिटिश बिस्किट कंपनीज नए उत्पादों और आकर्षक पैकेजिंग के साथ बाजार पर हावी होने की होड़ में थी। हंटले और पामर्स द्वारा 1831 में आविष्कार किए गए बिस्किट टिन दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हुए थे। फिर आए ये बिस्किट भारत में। भारत में बिस्किट की कहानी मुगलों और फारसियों के आगमन से जुड़ी हुई है। बिस्किट के लिए भारतीयों का प्रेम सबसे ज्यादा था, चाहे वो पंजाब में बनी घी से लदी आटा कुकीज हो या फिर मुंबई में बिकने वाली खारी या फिर मेरठ की कुरकुरी नान खटाई। हर शहर का अपना पसंदीदा बिस्किट होता है। भारत में कोयले से चलने वाले ओवंस पे पके हुए हस्त निर्मित बिस्किट की परंपरा सदियों पुरानी है, लेकिन यहाँ पर कारखाने में निर्मित बिस्किट की अवधारणा बिल्कुल नई थी। ये एक सदी पहले ब्रिटानिया और पार्ले जैसी कंपनीज के साथ शुरू हुई थी। भारत में आधुनिक बिस्किट का पहला प्रमाण 16वीं शताब्दी में मुगलों के आगमन के साथ हुआ। कहा जाता है भारत में खारी परतदार बिस्किट्स जिसे फेन कहा जाता है मक्खन से प्यार करने वाले फारसी ईरानी लोग लेकर आए थे। स्वादिष्ट नान खताई का आगमन डच के जहाजों से हुआ था। संपन्न बिस्किट संस्कृति को मुंबई और गुजरात में लाने के संदर्भ में पारसियों का बहुत बड़ा हाथ है। पारसी ही सुरती बतासा को मुंबई लेकर आए और मुसलमान नान खताई को सिंध पंजाब और दिल्ली तक। हालांकि भारतीय बिस्किट की कहानी ब्रिटिश योगदान के उल्लेख के बिना पूरी नहीं हो सकती। वो अपने साथ अपने पसंदीदा बिस्किट्स लेकर आए थे और उन्होंने भारतीयों को इन्हें बेक करना सिखाया। ओवन्स, जो इससे पहले तक एक अनसुना नाम था, अब वो आम हो चला था। क्योंकि व्यंजनों में अक्सर अंडे का इस्तेमाल किया जाता था, इसीलिए बेकर्स अनिवार्य रूप से मुस्लिम या फिर पारसी लोगों को ही इसमें हाथ लगाने देते थे। जहां उत्तर भारत में अपना बिस्किट घी से बनाया, तो दक्षिण राज्यों में बिस्कुट को अंडे नारियल और काजू से बनाया गया। क्योंकि ज्यादातर लोग यहां पर अंडा नहीं खाते थे, इसीलिए कई बेकरीज में इसे सिर्फ काजू पाउडर में बदल दिया गया। काजू स्थानीय रूप से उगाया जाता था और देश के हर हिस्से में बेहद पसंद किया जाता था। कोलकाता में सबसे लोकप्रिय बिस्किट प्रजापति है, जो फ्रेंच के साथ बंगाल से आया था। तो ये थी बिस्किट की रोचक कहानी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए अमर उजाला आवाज़।